हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। वेद को शिवांशा का भाई रोहन मिल गया था। पहले तो वेद ने प्रतीक को उसे मारने के ऑर्डर्स दिए थे, लेकिन जिस हालत में रोहन उन्हें मिला था उसके बाद वेद ने उसे मारने के बजाय उसकी देखभाल करने का फैसला किया। रोहन के चेकअप से डॉक्टर को पता चला था कि उसके साथ रेप हुआ है। ऐसी स्थिति में उसे किसी फैमिली मेंबर की जरूरत पड़ेगी। रोहन का शिवांशा के अलावा और कोई नहीं था। वेद शिवांशा के पास गया और उसे हॉस्पिटल लेकर आया। हालांकि वेद के लिए ये बताना आसान नहीं था कि रोहन के साथ क्या हुआ है। वही वेद जैसे ही शिवांशा को हॉस्पिटल लेकर आया वो बुरी तरह डर गई। ऊपर से उसने दरवाजे से रोहन की हालत देख ली थी। जैसे ही वेद ने शिवांशा को सब कुछ बताया वो अपना आपा खो बैठी और रोहन की इस हालत का जिम्मेदार खुद को ठहराने लगी। रोते हुए शिवांशा वेद के सीने से जा लगी। उसे एहसास भी नहीं था। वही वेद भी सब कुछ भूलकर शिवांशा को समझाने में लगा हुआ था। वेद ने शिवांशा के बालों को सहलाते हुए धीमी नम आवाज में कहा, काम डाउन बच्चा, रिलैक्स करो। तुम्हें कुछ भी करके खुद को संभालना होगा, तभी तुम उससे मिलने जा पाओगी। ऐसी हालत में मैं तुम्हें उसके पास भी नहीं ले जा सकता, शिवांशा ने सिसकते हुए कहा। मैं उसके सामने नहीं जा पाऊंगी वेद, मैं उसका सामना कैसे करूंगी? मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसका ध्यान रखूंगी। मैं उसका ध्यान नहीं रख पाई। मेरी वजह से आज अंकुश ने उसके साथ सब कुछ कर डाला है। इससे अच्छा तो वो मेरे साथ। शिवांशा की बात पूरी होने से पहले ही वेद ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, शश शश, बिल्कुल शांत हो जाओ। कोई अपने साथ इतना बुरा होना डिजर्व नहीं करता, ना रोहन और ना ही तुम। अंकुश ने जो भी किया है उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, लेकिन पहले सबसे जरूरी रोहन को संभालना है। प्रॉमिस करो कि तुम उसके सामने जाओगी तो रोगी नहीं। इतना कहकर वेद ने अपना हाथ शिवांशा के आगे कर दिया ताकि वो इस पर अपना हाथ रखकर वादा कर सके। शिवांशा ने रोते हुए कहा, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो फिर बताओ, तुम्हारे अलावा ये कौन करेगा? वेद ने प्यार से समझाते हुए कहा, आप देख लीजिए ना उसे। कुछ देर के लिए ये समझ लीजिए कि वो आपका छोटा भाई है, प्लीज, शिवांशा ने रिक्वेस्टिंग वॉइस में कहा। वेद शिवांशा से अलग हुआ और फिर हामी भर दी। उसकी हालत देखकर वेद को भी फिलहाल यही लग रहा था कि अगर वो इस हाल में रोहन के सामने गई तो वो ना तो खुद को संभाल पाएगी और ना ही रोहन को। वेद ने शिवांशा को वहीं पर बैठाया और खुद रेहान के पास जाने का निश्चय किया। शिवांशा को कमरे में छोड़कर वेद ने बाहर आकर प्रतीक से कहा, मैं बच्चे से बात करने जा रहा हूँ, क्या तुम इसका ध्यान रख लोगे? शी इज ब्रोकन। जी भाई, प्रतीक ने हाँ में सिर हिलाकर कहा। वेद उसके बाद तुरंत रोहन के पास पहुंचा। रोहन अभी तक किसी को अपने पास आने नहीं दे रहा था। वेद ने सारे स्टाफ को बाहर जाने का इशारा किया। उनके बाहर जाते ही रोहन ने जब वेद का चेहरा देखा तो वो सिसकने लगा। फिर वेद की नज़र उसके पैर की तरफ गई। वो चल नहीं सकता था, ऊपर से काफी कमजोर भी था। वेद उसके सामने आकर बिल्कुल शांत लहजे में बोला, रोहन, सॉरी बेटा, जो मैंने तुम्हें ढूंढने में देर कर दी और तुम्हें इस वजह से काफी कुछ झेलना पड़ा। वेद की बात सुनकर रोहन ने तुरंत ऊपर देखा। अब तक उसे लग रहा था कि उसे अंकुश ने ही फिर से कैद कर लिया है। रोहन ने धीमी आवाज में कहा, आप कौन हैं? तुम्हारी दीदी शिवांशा, उसका पति हूं मैं। वेद ने फिलहाल अपना इंट्रोडक्शन इसी तौर पर दिया ताकि रोहन शांत हो सके। आप सच बोल रहे हो? मेरी दीदी की शादी तो मनन भैया के साथ होने वाली थी। मेरी दीदी कहाँ है? क्या उन्हें पता है मेरे साथ क्या हुआ है? रोहन ने हिचकिचाते हुए पूछा। उसकी बातों से जाहिर था कि रोहन के साथ जो भी हुआ उससे वो अनजान नहीं था। अपनी ऐसी हालत में भी उसे शिवांशा की फिक्र थी। वेद ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, हाँ, लेकिन अब हमारी शादी हो गई है, शिवांशा बाहर ही है, मिलना चाहोगे उससे? दीदी ने मुझे ऐसे देखा तो वो, बोलते हुए रोहन चुप हो गया। उसकी आंखों में आंसू और शर्मिंदगी थी। रोहन के बिना बोले ही वेद उसकी इनसिक्योरिटी को समझ गया। वेद रोहन के पास आकर बैठा और उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर सहलाते हुए कहा, तो उसे बहुत बुरा लगेगा। मेरी एक बात हमेशा याद रखना रोहन, हमारे साथ जो भी गलत होता है उसे हम नहीं बदल सकते, लेकिन आगे जो भी होता है वो हमारे ही हाथ में होता है। रोहन, जो इतनी देर तक किसी को अपने पास तक नहीं आने दे रहा था, चुपचाप वेद की सारी बातें सुन रहा था, जैसे कि शिवांशा सुनती थी। वेद भी जानता था कि किसी भी टूटे हुए इंसान को किस तरह संभालना है। आखिर उसने खुद को और अपने भाई बहनों को भी संभाला था। वेद ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, मैं झूठ नहीं कहूंगा, लेकिन तुम्हारे साथ जो भी हुआ है शिवांशा उसके बारे में जानती है। उसकी भी हिम्मत नहीं हो रही कि वो आकर तुमसे बात करे। मैं उसे यहाँ लेकर आता हूँ। उम्मीद है कि तुम मेरी बात को हमेशा याद रखोगे और अपनी इन कड़वी यादों से बाहर निकलने की कोशिश करोगे। बाकी जिन्होंने भी तुम्हारे साथ ये किया है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि उन्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। रोहन ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाया। वही वेद जब कमरे से बाहर निकला तो शिवांशा प्रतीक के साथ वहीं पर खड़ी उन दोनों को देख रही थी। जिस तरह से वेद ने रोहन को संभाला था, शिवांशा आंखों ही आंखों में उसे शुक्रिया अदा कर रही थी। वेद ने बिना कुछ बोले शिवांशा को अंदर आने का इशारा किया। जैसे ही वो अंदर गई और रोहन को इस हाल में देखा तो शिवांशा चाहकर भी अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाई। वो दौड़कर उसके गले लग गई और रोने लगी। वही रोहन का भी कुछ ऐसा ही हाल था। शिवांशा को देखकर वेद ने अपना सिर पकड़कर कहा, इतना समझाया था फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। बच्चा अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं, मैडम को तो किसी चीज से फर्क ही नहीं पड़ता। वेद चुपचाप उनके पास जाकर खड़ा हो गया। शिवांशा ने रोहन को सहलाते हुए कहा, आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से हुआ ना ये सब। मुझे तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। आपकी कोई गलती नहीं है दीदी, अरमान भैया ने मुझे अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाया था, मेरा इलाज भी हो रहा था, पर न जाने कैसे अंकुश को मेरे बारे में पता चल गया और वो मुझे ले गया। आपको कहाँ पता था कि आपके पीछे से ये सब हो रहा है, रोहन ने शांत लहजे में बताया। वेद के समझाने पर रोहन शिवांशा के सामने नॉर्मल रहने की कोशिश कर रहा था। फिर वो शिवांशा से अलग हुआ और उसके आंसू साफ करके दर्द भरी मुस्कराहट के साथ बोला, प्लीज रोना बंद कीजिए, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ, पर मैं खुश हूँ कि आपने एक सही इंसान से शादी की है। मैं आ गया हूँ तो अब सब ठीक हो जाएगा। रोहन की बातों से साफ था कि वो कम उम्र में भी काफी समझदार था। शायद ये हालातों की वजह से हुआ था जो उसने और शिवांशा ने देखे थे। वेद ने फिर उन दोनों को अकेले छोड़ दिया और बाहर प्रतीक के पास आ गया। अंदर वेद के चेहरे के भाव नर्म थे, वहीं बाहर आते ही उसके चेहरे के भाव सर्द हो गए। वो आदमी कहाँ है जिन्होंने इसे किडनैप करके रखा था, वेद ने तुरंत पूछा। वो जानना चाहता था कि आखिर उनमें से कौन था जो रोहन के साथ ये दरिंदगी कर रहा था। कुछ एक लोग तो वहीं पर मारे गए हैं, लेकिन बचे हुए कुछ हमारे आदमियों के कैद में हैं। जिन्हें मारा था वो बाहर के सिक्योरिटी गार्ड थे, और जो जिंदा बचे हैं वो इस बच्चे के एनी टाइम साथ रहते थे। उनमें से ही कोई होगा भाई, प्रतीक ने जवाब दिया। डॉक्टर को डीएनए सैंपल्स मिले, वेद ने धीमी आवाज में पूछा। अनफॉर्चुनेटली नहीं, बच्चों के साथ काफी टाइम से ये सब कर रहे थे, पता नहीं कितने और कौन लोग होंगे और न जाने कब कब किया होगा। चिंता मत कीजिए भाई, जब मौत सामने दिखती है तो अच्छे अच्छे सच बोल देते हैं, प्रतीक ने सख्त आवाज में कहा।
जानता हूँ तुम देख लोगे, ऐसा करो अंकुश राजावत से मिलने का इंतजाम करो, वेद ने दांत पीसते हुए कहा। प्रतीक ने उसकी बात पर हामी भरी। वो जानता था कि इतना सब कुछ होने के बाद वेद अंकुश से मिलने को जरूर कहेगा। प्रतीक वहां से चला गया। वेद ने एक नज़र अंदर झांका तो शिवांशा समझा बुझाकर रोहन को खाना खिला रही थी। उसने टाइम देखा तो सुबह के 9 बज रहे थे। वेद ने रात को जल्दबाजी में शिवांशा को हॉस्पिटल ले आया था। ऊपर से उसने अपने घर वालों को बताया भी नहीं था। सुबह जब आराध्या ऊपर गई तो वेद और शिवांशा दोनों ही अपने कमरे में नहीं थे। उसने नीचे आकर सबको इस बारे में बताया। भाई तो काम से जाते रहते हैं पर भाभी भी नहीं है, क्वाइट स्ट्रेंज। तुमने कॉल किया उन्हें आराध्या? आराध्या ने पूछा। नहीं, सोचा पहले आप सबको बता दूं, मुझे लगा वो आप में से किसी को बता कर गए होंगे, आराध्या ने जवाब दिया। वो सब आपस में बात कर रहे थे कि उतने में नव्यांशी ने वेद को कॉल लगा दिया। उसने फोन स्पीकर पर कर रखा था। भाई आप कहाँ हैं और भाभी भी घर पर नहीं है, सब ठीक है ना? नव्यांशी ने कॉल रिसीव करते ही पूछा। हाँ सब ठीक है, रात को शिवांशा को ठीक नहीं लग रहा था, वो पूरे दिन कमरे के अंदर थे तो उसे घुमाने के लिए बाहर ले आया। हमें आने में टाइम लगेगा, हो सकता है रात हो जाए या फिर कल आ जाएं। वंश को बोलना कि रेस्ट करने के बाद वो एक बार ऑफिस चला जाए, वेद ने जवाब दिया। नव्यांशी ने उसकी बात पर हामी भरी और कॉल काट दिया। वहीं कॉल कट करते ही अक्षत ने मुस्कुराकर कहा, एक दिन के हनीमून पर कौन जाता है, भाई भी ना, ऊपर से उन्हें सब बताते हुए भी कितनी शर्म आ रही थी। जैसे ही अक्षत ने अपनी बात खत्म की, वंश ने उसकी तरफ घूर कर देखा और सिर हिलाकर कहा, लगता है तुम्हारा मार खाने का मन कर रहा है, जितना आराम करना है कर लो, 11 बजे मेरे साथ ऑफिस चलना, बहुत मस्ती सूझ रही है ना, काम करवाऊंगा तो सब पता चल जाएगा। अरे नहीं भाई, मैं तो मजाक कर रहा था, आप इतने सीरियस क्यों हो रहे हो, ये डिपार्टमेंट वैसे भी बड़े भैया का है, आप क्यों उनकी तरह कर रहे हो, अक्षत ने बच्चों जैसा मुंह बनाकर कहा। उसकी हालत देखकर आराध्या को हंसी आने लगी, तो वहीं वंश ऊपर चला गया। शिवांशा के साथ बाहर जाने का सुनने के बाद नव्यांशी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने मन ही मन कहा, इनका रिश्ता सच में समझ नहीं आता। आई होप कि मेरे मन का वहम मेरा वहम ही निकले और इनका रिश्ता नॉर्मल हो। बहुत मुश्किल से भाई को खुशियां मिली हैं, किसी की नज़र ना लग जाए। धीरे धीरे ही सही, लेकिन नव्यांशी वेद और शिवांशा के रिश्ते को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रही थी। वहीं वेद अपनी तरफ से शिवांशा और रोहन का ध्यान रखने की पूरी कोशिश कर रहा था। रोहन का ट्रीटमेंट शुरू हो चुका था, शिवांशा अपनी तरफ से उसका पूरा साथ दे रही थी। इस बीच प्रतीक ने वेद को आकर बताया कि उसे अंकुश से मिलने की इजाज़त मिल गई है। शाम के लगभग 5 बजे के करीब शिवांशा और रोहन को प्रतीक की जिम्मेदारी पर छोड़कर वेद डिटेंशन सेंटर पहुंचा। अंकुश को अलग जेल में रखा गया था। वेद को उससे मिलने के लिए अलग से कमरा देने के बजाय जेल में ही भेजा गया था। अपने सामने वेद को देखकर अंकुश ने तिरछी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं जानता था तुम यहां जरूर आओगे। चलो बताओ, अब मुझे बाहर कब निकाल रहे हो और जो चीज़ मेरी है वो कब लौटाने वाले हो? तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझे कुछ दे सको। बाकी तुम गिरे हुए तो हमेशा से ही थे, पर इस हद तक गिर जाओगे उसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। शर्म नहीं आती तुम्हें एक 14 साल के बच्चे के साथ वो सब दरिंदगी करवाते हुए? अच्छा, तो तुम्हें वो बच्चा मिल गया है। खैर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इन सब की जिम्मेदार उसकी बहन है। वो मेरी बात मानती तो उसके भाई के साथ ये सब नहीं होता। जाकर उससे सवाल जवाब करो ना। और तुम्हें कब से उनकी परवाह करने लगी? भूल गए क्या वो लोग कौन हैं? देवराज ठाकुर के अंश हैं, तुम्हें तो उन्हें मार देना चाहिए था, अंकुश ने बेशर्मी से कहा। इतना सब कुछ करने के बाद भी उसके चेहरे पर शर्म बिल्कुल नहीं थी। बच्चा तो मुझे मिल गया है, लेकिन अब एक बात कन्फर्म हो गई है कि तुम अपनी पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे बिताने वाले हो। बाकी किसके साथ कैसा करना है उसकी एडवाइस मुझे तुमसे लेने की जरूरत नहीं है, वेद ने जवाब दिया। वेद बस वहां कन्फर्म करने आया था कि रोहन के साथ जो भी हो रहा था वो अंकुश के कहने पर हो रहा था या उसके पीछे से ये सब किया जा रहा था। उसकी बातों से साफ जाहिर था अंकुश जानबूझकर ये करवा रहा था, और सच जानने के बाद वेद का गुस्सा और भी बढ़ गया। वेद ने आगे कुछ नहीं कहा और वहां से जाने लगा। तभी अंकुश पीछे से बोला, कहीं ऐसा तो नहीं कि वेद सिंह चौहान को अपने ही माँ बाप के कातिल की पोती से प्यार हो गया है? वैसे तुम कब से दूसरों की जूठन खाने लगे? अचानक वेद के दिमाग में कुछ स्ट्राइक हुआ। आज उसे शिवांशा और रोहन के बर्ताव में काफी समानता लगी थी। वो अंकुश के पास आया और उसका गला पकड़कर कहा, ये क्या बकवास कर रहे हो? अंकुश ने उसका हाथ झटक कर उसे दूर किया और सर्द आवाज में कहा, वही जो तुम समझकर भी नहीं समझना चाहते हो, मेरी लिटिल गर्ल तो हमेशा से ही मेरी थी। 12 साल की थी जब मैंने उस पर अपनी मोहर लगाकर पूरी तरह अपना बना लिया था। अब क्या मेरी मुंह लगाई हुई लड़की को प्यार करोगे? जैसे ही अंकुश की बात खत्म हुई, वेद के चेहरे के भाव ऐसे हो गए जैसे किसी ने गर्म लोहा पिघला दिया हो। अगर आज अंकुश और उसके बीच वो सलाखें ना होती तो इस वक्त अंकुश की लाश जमीन पर पड़ी होती। नीच आदमी, तुमने एक बच्ची के साथ जबरदस्ती की और अब अपने इस घटिया काम को ग्लोरीफाई कर रहे हो, वेद ने बेहद सर्द आवाज में कहा। ओके, दिस इज ऑल। अंकुश ने शिवांशा के बचपन में उसके साथ रेप किया था, अब तो अंकुश गया। चलिए पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट जल्दी चाहिए तो आई वॉन्ट ढेर सारी समीक्षा।